ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवतम कक्षा में। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं इसी प्रसंग का, क्षीर सागर के मंथन के ऊपर जो देवतागण और असुरगण मिलकर कर रहे हैं। और इस अध्याय आठवें स्कंद का आठवां अध्याय, इस अध्याय का नाम है क्षीर सागर का मंथन। श्लोक संख्या एक। श्री शुक उवाच पीते करे प्रशांकेण प्रीतास्ते अमरदानवा ममंथुस्तरसां सिंधुं हविर्धानी ततो भवत्। श्री शुक उवाच पीते करे प्रशांकेण प्रीतास्ते अमरदानवा ममंथुस्तरसां सिंधुं हविर्धानी ततो भवत्। श्री शुक उवाच पीते गरे प्रशांकेण प्रीतास्ते अमरदानवा ममंथुस्तरसां सिंधुं हविर्धानी ततो भवत्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री शुका उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा पीते पी लिए जाने पर गरे विष वृषंकेण बैल पर बैठने वाले शिवजी द्वारा प्रीतः प्रसन्न होकर ते वे सब अमर देवतागण दानवः तथा असुरगण ममंथु पुनः मथने लगे। तरसा बड़े वेग से सिंधुम क्षीर सागर को, हविरधानी सुरभि गाय जो घी देने वाली है, तथा उस मंथन से अभवात उत्पन्न हुई। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तात्पर्य, सुरभि गाय को हविरधानी कहा गया है क्योंकि वह मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से घी बनता है जो बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है। जैसे कि भगवद्गीता 18:5 में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तथा तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है, यज्ञ करने के लिए घी नितांत आवश्यक है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गायें हो। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 18:44 में गो रक्षा की संस्तुति की गई है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ओम अज्ञानस्तमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज से हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले के अध्याय में जो अंत हुआ, हमने देखा कि जैसे ही समुद्र मंथन शुरू किया तो बहुत हलाहल कालकूट जहर निकला और उस जहर को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं असुरों को आज्ञा दी कि आप शिवजी की शरण में जाएं। सभी देवतागण जाते हैं, शिवजी से प्रार्थना करते हैं, शिवजी प्रकट होते हैं और शिवजी उस जहर को अपने हथेली में लेके पी जाते हैं। तो जब शिवजी ने जहर पी लिया तो आज सुखदेव गोस्वामी जी आगे इस कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, पीते गरे वृषांकीर्ण। वृषांकीर्ण शिवजी का दूसरा नाम है, जो बैल उनकी सवारी है नंदी उस पर बैठने वाले। पीते पी लिया, गरे मतलब जहर, पीतास्ते अमर दानवा, इससे अमर यानी कि देवतागण और दानव दोनों ही प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर क्या हुआ, मंथु तरसा, तरसा बड़े वेग से एक नवीन उत्साह के साथ मंथन शुरू कर दिया। और जब मंथन शुरू किया तो समुद्र का सिंधु यानी क्षीर सागर का हविरधानी ततो भवत, घी को देने वाली गाय यानी सुरभि गाय तब वहां पे पहले प्रकट हुई समुद्र से। तो उसके बाद हम देखेंगे एक के बाद एक नई कई चीजें निकलेंगी। इसके बाद एक घोड़ा निकलेगा, फिर हाथी निकलेगा, फिर कई मणियां निकलेंगे, कई अप्सराएं निकलेंगी, वो उसके बाद अंततः अमृत निकलेगा, जिसको अमृत को लेकर दानव लोग भाग जाएंगे और फिर देवतागण फिर से हमारी रक्षा कैसे होगी और फिर भगवान मोहिनी का अवतार लेते हैं। तो आज के इस प्रसंग में बताया जा रहा है कि जब शिव जी ने विष पिया तो दोनों देवता और असुर बहुत प्रसन्न हो गए और नवीन उत्साह से उन्होंने मंथन शुरू किया। यहां पर हम देख सकते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी ने जहर पिया और जहर पीने के बाद अब उसे जब अमृत निकलना है, अब पूरे प्रसंग में हमें शिव जी का कहीं व्याख्या नहीं मिलेगी। शिव जी तब आएंगे जब मोहिनी अवतार हो जाएगा, तो शिव जी आएंगे, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं, इतना अद्भुत रूप। शिव जी ने ये नहीं कहा है सारा जहर तो मैंने पिया, अमृत की कुछ बूंदे तो दे दो, है ना, मणि निकल रही है, सब कुछ निकल रहे, कुछ तो दो। चुपचाप सेवा करके शिव जी पीछे बैकग्राउंड में, ये वैष्णव का चरित्र होता है। जैसे पीछे कई प्रवचन प्रेमान लोग उतारे थे, कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते, उन्होंने सेवा की, देवताओं को प्रसन्न किया और पीछे हो गए। और उसके बाद देवता और असुरों में नया उत्साह आया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने जब इस संस्था की शुरुआत की, प्रभुपाद जी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वह एक जहर के समान था। और जब प्रभुपाद के शिष्य थे, इतने नौ सिखिए थे, इतने उनके तरह तरह के अनर्थ थे, उन अनर्थों को सहना जहर पीने के समान थे। प्रभुपाद के एक शिष्य थे माइकल और जेन, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, इकट्ठे रहते थे। प्रभुपाद ने बोला ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ो और विवाह करो। जो विवाह करने लगे तो प्रभुपाद हालांकि सन्यासी हैं, उन्होंने उनका पूरे विवाह का आयोजन किया और बोले ठीक है इसके पूरा फीस बनाएंगे। तो जेन जो लड़की थी उसने बोला मैं अपनी बहन को बुला सकती हूँ, समझा ठीक है बुला लीजिए। तो उनकी जो बहन आई वो प्रभुपाद जी के साथ फीस बना रही थी छोटी किचन के अंदर, तो उसने एक टॉप डाला हुआ था और एक मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। प्रभुपाद एक सन्यासी है और किचन में दोनों इकट्ठे फीस बना रहे हैं, प्रसाद भोग बना रहे भगवान के लिए। अचानक उस लड़की ने बोला स्वामी जी कैन आई गो एंड स्मोक। प्रभुपाद ने बोला ठीक है जाओ, प्रभुपाद ने रोका नहीं। आप सोचिए कितना टॉयलेट करना पड़ा होगा प्रभुपाद जी को। वो लड़की गई बाहर आराम से स्मोक करके आई, दोबारा बना लिए। स्वामी जी बोला प्लीज इफ यू कैन वॉश योर हैंड्स। तो उन्होंने हाथ धोए दोबारा से बनाया। प्रभुपाद जी ने जब ठीक है विवाह भी हो गया और बाद में यही जो उसकी छोटी बहन थी बाद में क्या बनी, यमुना माता जी। कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं की उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए। और उस समय देखिए क्या हालत थी, प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी पर्सनल हिज होलीनेस सत्सु स्वामी महाराज, जिनका नाम होता था स्टीव, वो ऑफिस में काम करते थे और ऑफिस में काम करते हुए प्रभुपाद जी को फोन करते थे, स्वामी जी आई विल बी कमिंग फॉर लंच। मोस्ट वेलकम प्रभुपाद कहते थे। वो आते थे आराम से, प्रभुपाद उनके अपने हाथ से चपाती गरम गरम सब्जी दाल बनाते थे, उनको सर्व करते थे, चुपचाप खा के चले आते थे, जूठी प्लेट भी बाद में प्रभुपाद होते थे। सोचिए क्या कितना जहर पीने वाली बात है, उल्टी सीधी उनकी हरकतें, मतलब कि दीक्षा लेने के बाद भी वो सब नियमों को तोड़ते थे। और प्रभुपाद जी क्या सहन किया, उस जहर के घूंद को पिया और आज वही शिष्य इतने बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, हमें सब कुछ बड़ा थाली पे सजा के मिल गया है। एक बार इस होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली मंदिर में आए थे, इस ग्रेस मोहन प्रभु ये बात सुनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ आपको प्लेट में मिल गया है, यू हैव टू जस्ट मेंटेन इट, इसको उल्टा सीधा मत फेंक देना। इधर होता इतना हम लोगों ने इतना संघर्ष देखा नहीं, आप सबके लिए सब कुछ तैयार है, इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर रहने की सुविधा, इतना बढ़िया प्रसाद, फर्स्ट क्लास, अब प्रिंटेड बुक्स हैं हमारे पास, कंप्यूटर में पूरा वेदा बेस है, डिजायर ट्री है, आपको क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए सब कुछ प्राप्त है। उस समय सोचिए जब प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया था, भगवद्गीता की कॉपी भी नहीं थी ना, कोई भागवतम भी केवल एक पहला स्कंध था, कितना संघर्ष करना पड़ा था भक्तों को। तो पूरे उत्साह के साथ हमारे को सेवा में जुड़ना चाहिए। इस आंदोलन के शुरुआत में जो जहर उत्पन्न हुआ उस सारे जहर को प्रभुपाद पी चुके हैं और हमारे लिए अब अमृत प्राप्त करने के लिए हमें केवल नवीन उत्साह के साथ हमेशा जुड़ना है। शिला भक्तिनो ठाकुर कहते हैं अगर हम पूरे उत्साह के साथ अपने गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तो हमारे सारे के सारे अनर्थ जो पर्वत के समान है जल के राख हो जाएंगे। केवल हमने अपनी भजन क्रिया जो हमें आदेश है उसको पूरे उत्साह से करना चाहिए। जैसे कि देवतागण असुरगण अब बड़े उत्साह से समुद्र का मंथन कर रहे हैं। एक और विशेष बात इसमें लगती है कि प्रीतास्ते अमर दानवा, दोनों देवता और असुर बहुत प्रसन्न हो गए। मेरे ख्याल से पूरे इतिहास में यह पहली घटना होगी जिसमें एक ही समय में देवता और असुर दोनों एक साथ प्रसन्न हो रहे हैं। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो असुर बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, जब असुर प्रसन्न होते हैं तो देवताओं की बुरी हालत हो जाती है। ये एकमात्र ऐसी घटना होगी जिसमें देवता और असुर इकट्ठे प्रसन्न है। क्या कारण है? हाँ, गोल एक है, चाहे वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए उन्होंने संधि की, ट्रूस हो गया और उनका गोल एक है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इसी ढंग से जीव गोस्वामी पाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है माधव महोत्सव। उसमें जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं साधारणतः अगर किसी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है उसको दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो उनकी तरफ उनकी अवहेलना भी कर सकता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है उनको उन भक्तों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनका भी यही लक्ष्य है और जिनकी यही मानसिकता है, और उन्हीं के साथ सहयोग करके वो अपने जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग भी एक दूसरे पर निर्भर हैं कि हम लोग अगर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। देवता और असुर भी एक दूसरे पर निर्भर है। सही भक्त लोग अंदर आ सकते हैं, बारिश हो सकती है तो इसलिए काफी जगह है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा अंदर आप आ जाइए। तो बिना एक दूसरे पर निर्भर हुए हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। देवता और असुर बिल्कुल 180 डिग्री का उनमें जैसे कहते हैं 36 का आंकड़ा, और वो लोग अब दोनों इकट्ठे प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि जीवन का लक्ष्य एक ही है। और ना केवल देवता और असुर एक दूसरे पर निर्भर है, जब उन पे ऐसा संकट आया कि दोनों एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे तो उन्होंने क्या किया, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति शिव जी की शरण ग्रहण की। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में विशेषकर जब नए नए भक्त जुड़ते हैं उनके जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई मुश्किलें आ सकती हैं। उन मुश्किलों का समाधान ढूंढने के लिए अगर हमें किसी की मदद चाहिए तो मदद मांगने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन एक दूसरे की मदद करने के लिए है ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो सभी देवता और असुर मदद मांगने गए शिव जी के पास, शिव जी ने उनकी मदद की, पूरा जहर पी लिया, अब उनके अंदर उत्साह जागृत हो गया। तो हमारे साधना भक्ति में निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी। हम एक दूसरे से मदद मांगे और दूसरे भक्तों से मदद मांगे और लक्ष्य पर केंद्रित रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्णा भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी प्रकट हुए, शिव जी का नाम यहाँ पे आया वृषांकेण, और वृषांकेण यानी कि शिव जी यानी कि एक बैल पर सवारी, और फिर प्रकट हुई मंथन से एक गाय। तो गाय और बैल का मनुष्य समाज के लिए बहुत महत्व है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर गाय और बैल प्रसन्न अवस्था में है, खुश हैं, तो पूरा मानव समाज खुश रहेगा, संपन्न रहेगा। क्यों, ऐसा कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं इसको समझ नहीं पाएंगे। ये क्या बात कह रहे हैं, गाय और बैल को खुश रखे तो हम खुश रह जाएंगे, ऐसे कैसे है? प्रभुपाद जी समझाते हैं जो गाय है वो पृथ्वी की प्रतिनिधि है और जो बैल है वो किसके हैं, धर्म के। अगर गाय और बैल को हम खुश रख रहे हैं इसका मतलब पृथ्वी पे धर्म का पालन हो रहा है, और पृथ्वी पे धर्म का पालन हो रहा है तो पूरा मानव समाज संपन्न रहेगा। और जहां गाय और बैल दुखी अवस्था में है, हम दिखने में जितनी भी सुविधाएं बटोर लें वो मानव समाज खुश नहीं रह सकता, वहां क्लेश ही रहेंगे, झगड़े ही रहेंगे, तरह तरह की बीमारियां ही रहेंगी, और हम देख सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं यही प्रकृति का नियम है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, इस मानव समाज को इस भौतिक जगत में कैसे रहना है उसके लिए भगवान ने वर्णाश्रम का आयोजन किया। कि ये हमारा असली घर नहीं है, असली घर तो भगवान का धाम है, जब तक यहां पर हो ये वर्णाश्रम के अंतर्गत रहो। और इस वर्णाश्रम पूरे प्रणाली के अंदर गायों और बैलों का एक विशेष स्थान है, इसलिए गाय को अपना हमारी माता कहा जाता है और बैल को पिता कहा जाता है। ये गाय और बैल मानव समाज की हर आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है आज का हमारा समाज भगवतहीनता, गॉडलेसनेस, भगवान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो गाय और बैल की क्या बात करें। ये गाय भगवान को बहुत प्रिय है, इस गाय को सुरभि गाय कहा गया है। भगवान के धाम में हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प्र विक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्त। लक्ष लाखों लाखों सुरभि गाय है। इस सुरभि गायों को कामधेनु है, इनकी विशेषता क्या है कि ये असीमित मात्रा में दूध दे सकती हैं और कभी भी दूध दे सकती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य भगवान की छाया में ही बना है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य का प्रतिबिंब है, उसी ढंग से इस बौद्ध जगत में जितनी गायें हैं वो सुरभि गाय की ही प्रतिबिंब है। तो भगवान का हम जानते हैं गायों से विशेष प्रेम है, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे बहुत सी सुंदर लीलाएं हैं कृष्ण और गायों के बीच में, जब आए कार्तिक का महीना भी गोपाष्टमी आएगा और भगवान 5 वर्ष के हो जाते हैं तो भगवान सिद्ध करते हैं कि अब मैं गायों को चराने जाऊंगा, मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। जय श्री श्री राधा राधे करमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो यशोदा माता पहले कुछ चिंतित होती हैं कि पता नहीं अंदर चला जाएगा वन में, कहाँ जाएगा, भूखा रहेगा, कैसे गायों को चराएगा। तो अंत में वो मान जाती हैं और फिर बोलती हैं ठीक है कान्हा तुम जाओगे, ये पादुकाएं हैं ये डाल के जाना, ये छतरी है ये लेके जाना। भगवान ने बोला नहीं, जब गायें हैं उनके पास पादुकाएं नहीं हैं, छतरी नहीं है, तो मैं क्यों, पहले उन सब के लिए पादुकाएं बनाओ तब मैं पादुका डालूंगा। तो उन्होंने बोला ये तो संभव नहीं है। कितनी गायें थी उनके पास? 9 लाख। कितनी पादुकाएं चाहिए? 36 लाख। बोला ये तो संभव नहीं है। तो जब ये सुना गायों ने कि कल सुबह कृष्ण हमें चराने ले जाएंगे बिना पादुकाएं डाले, तो उन्होंने क्या सोचा, तो बहुत गलत बात है, कृष्ण के पांव इतने कोमल हैं और वन में जाएंगे कांटे चुभेंगे, वो कैसे सहन कर सकते हैं। सब गायों की आंखों में आंसू आ गए और सब गायें भागे चारों दिशा में और पूरे व्रज को अपने खूनों से खोद खोद के खोद करके एकदम समतल बना दिया। और बिल्कुल समतल बनाने के बाद अपने थनों से दूध निकाल निकाल के पूरा जो व्रज था भिगा दिया, यानी कि कल सुबह जब कृष्ण निकलेंगे तो एकदम गीली मिट्टी मिलेगी, एकदम सॉफ्ट सॉयल, जैसे कि हम देखते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर होता है बिल्कुल। और भगवान चलेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये है गायों का और कृष्ण का संबंध। इसलिए गाय कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण जिस धाम में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? गोलोक। क्या मतलब? गायों का लोक। और इस बौद्ध में प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए? गोकुल, गायों के कुल में प्रकट हुए। इतना प्रेम है कृष्ण को। और क्योंकि भगवतहीन समाज है, गॉडलेस सोसाइटी है, काउलेस सोसाइटी है, लोगों को मालूम ही नहीं गाय का क्या महत्व है, बैल का क्या महत्व है, और कितने स्लॉटर हाउसेस खुल रहे हैं। ये पाश्चात्य देशों का गलत प्रभाव, पाश्चात्य देश में लोग कुत्तों को ज्यादा महत्व देते हैं, गायों को कम। बोलते हैं डॉग्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। आप देखिए पूरा कुत्तों का कितना ध्यान रखा जाता है, उनको सजाया जाता है, ब्यूटी पार्लर्स हैं उनकी, उनको ट्रिम किया जाता है, अच्छे अच्छे बिस्किट्स हैं उनके लिए, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स हैं, पूरा ध्यान रखा जाता है कुत्तों का। और कुत्तों का इतना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मानव समाज की हालत देखिए। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा है, तो एक रिपोर्टर ने पूछा वियतनाम छोटा सा देश है, अमेरिका इतना सुपर पावर है, अमेरिका हार क्यों रहा है? प्रभुपाद ने बोला स्टॉप काउ स्लॉटर, गायों की हत्या बंद करो, तभी हालत ठीक होगी। तो अभी एक भक्त हमें बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट नगर में पास में एक पेट हॉस्पिटल है पशुओं का, तो वहां पे एक बेंच है और उस बेंच के लिखा हुआ है इन द लविंग मेमोरी ऑफ माय पेट पेप्सी। इतना प्रेम लोग कुत्तों से कर रहे हैं। एक इंडिया टुडे में आर्टिकल आया था कि एक यहाँ के दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपने घर में 10 कुत्ते रखे हुए हैं और 10 के 10 कुत्ते एक स्टेटस सिंबल है किस नस्ल का कुत्ता हमने रखा हुआ है, और 10 कुत्तों की फोटो थी और 11वीं उनकी फोटो थी, और हैरानी की बात है सबके चेहरे एक जैसे लग रहे थे। जिनसे प्रेम करेंगे वैसे ही भाव हमारे उत्पन्न होंगे। कुत्तों विदेशों में आप जाएं तो अगर कोई कुत्ता मल त्यागता है तो जो उसका मालिक है साथ में हाथ में पूरा नैपकिन लेकर चलता है और उसके नैपकिन से उसको उठाना पड़ता है, अगर वो नहीं उठाएगा उसको फाइन हो जाएगा, सजा मिलेगी, इतना प्रेम वो करते हैं। गलत जगह प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं पूरे मानव समाज खुश नहीं रह सकता क्योंकि गायों की हालत बहुत बुरी है। दिल्ली में हम देखते हैं गायें घूम रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, उल्टा सीधा खा रही हैं, और जो गायों से दूध निकाला भी जाता है, प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं दूध तभी उत्पन्न होगा जब पर्याप्त गायें होंगी। आज की स्थिति बिल्कुल उल्टी है, पर्याप्त दूध है लेकिन गायें नहीं है, हैरानी की बात है। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, सब अपने आप को इतना बुद्धिमान कहते हैं, पूछे तो सही ये दूध कहां से आ रहा है, कुछ पता नहीं किसी भी ढंग से दूध, कितने ही हम देख चुके हैं न्यूज सीरियल्स में किस किस ढंग से गलत ढंग से दूध बनाया जाता है, वो लोग खा रहे हैं दूध आराम से, मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, क्या पनीर है, क्या रसगुल्ला है, क्या मिठाई है, क्या दूध है, तभी देखिए तरह तरह की बीमारियां, कैंसर का रोग तो ऐसा फैला हुआ है। आज से 20-25 साल पहले कैंसर ऐसा नहीं था, हमें याद है कैंसर आता था तो खाली हिंदी मूवीज में आता था, कैंसर हीरो को कैंसर हो गया, फिल्म सुपर हिट हो गई। अब तो हर किसी को झोपड़ी झोपड़ी में कैंसर के रोग घूम रहे, को खाने की वस्तु इतनी कंटामिनेटेड है कैंसर भी होगा और मानव समाज दुखी भी रहेगा। फिर भी हम पाश्चात्य देशों की नकल मार रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंगाल में कहावत है कि एक व्यक्ति था कलकत्ता में कुत्ते का मांस बेच रहा था, आइए आइए कुत्ते का मांस है, सब कर कुत्ते का मांस बेचा, कोई नहीं आ रहा था, उसे मतलब कैसे बेचूं, कह रहे ये मांस साधारण नहीं है, ये जो कुत्ता है इसको स्वयं वायसराय जी ने मारा था, ये साधारण कुत्ता नहीं है, अंग्रेज साहब ने मारा है कुत्ता, लो फटाफट वो मांस बिक गया। तो जो चीज भी विदेशी है, फिरंगी है, साहब लोगों की है, अभी तक वो हमारी मानसिकता है, ये हमारे पे धिक्कार है, हमारी वैदिक संस्कृति है, इस वैदिक संस्कृति को हमने बचाना है। कई लोग पूछते हैं भारत में तो बड़ी पूजा हो रही है जी, बड़ी भक्ति हो रही है, फिर भी भारत में इतने संकट क्यों, इतनी गरीबी क्यों, सुनामी आती है यहाँ पे, अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, इतना सैलाब आ जाता है, ऐसा क्यों? विदेशों में तो सरेआम गायों की हत्या हो रही है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब संपन्नता है, ऐसा क्यों? आते हैं ना, पूछा आपने किसी से प्रश्न, हाँ बोले गायों की रक्षा करो, धर्म का प्रचार करो, यहाँ तो इतना धर्म है, यहाँ ही सबसे ज्यादा मारामारी है, और विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करें, भारत वालों को ऐसा गलत कार्य करने का ज्यादा रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि वैदिक संस्कृति के प्रचार की जिम्मेवारी भारतवासियों की है। आज पूरे संसार में जो क्लेश मच रहा है उसकी जिम्मेवारी हमारी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ना तो हम खुद वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में उतार रहे हैं, ना इसका प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे समाज में सुख शांति आ सकती है? इसलिए इसको हमें समझना है, गायों का क्या महत्व है। ये सुरभि गाय पूर्व काल में इन्हीं गायों को लेकर आपस में युद्ध होते थे, गाय एक विशेषता थी, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी दशरथ महाराज से ले गए ताड़का इत्यादि असुरों का वध करने के लिए, तो सफर करते करते कई जंगलों से गुजरते गुजरते वो मिथिला की तरफ जा रहे थे जनक महाराज के पास। रास्ते में उन्होंने गौतम ऋषि की एक कुटिया दिखाई जहाँ उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, और जब जनक महाराज के राज्य में पहुंचे तो जनक महाराज के एक मंत्री थे शतादन, जो कि गौतम ऋषि का ही पुत्र थे, जब उनका मालूम चला कि उनकी माता का उद्धार हो गया तो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने विश्वामित्र का गुणगान करना शुरू किया, और विश्वामित्र का गुणगान करते हुए राम और लक्ष्मण को बताया कि विश्वामित्र का क्या इतिहास था, कैसे इतनी उच्च स्थिति में पहुंचे, कैसे ब्रह्म ऋषि बने। बताया विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, और शिकार करने एक बार जंगल में चले गए तो वहां जंगल में उन्होंने एक कुटिया देखी छोटी सी। जब वो कुटिया में प्रवेश किया तो कुटिया में बहुत ही साधारण सा वातावरण था, जैसे बहुत ही निर्धन सा वातावरण। उन्होंने बोला कहां पे कौन से संत होंगे, और उनको मालूम चला यहां पे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी रहते हैं, तो बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने जाके उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि जी भी बड़े प्रसन्न हुए, उनका सत्कार किया। वो बोला वशिष्ठ मुनि ने कहा कृपया करके अपने सारे जो आपके साथ सैनिक हैं, जो आपके साथ आए हैं लोग, लेके आइए, मैं उनका कुछ स्वागत करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी ने देखा है क्या साधु व्यक्ति है, आसपास कुछ है भी नहीं, ये क्या स्वागत करेगा। बोला नहीं नहीं रहने दीजिए वशिष्ठ मुनि, नहीं ये हमारा सत्कार करने का हमें मौका दीजिए। जब इतना बोला चलो ठीक है, उन्होंने बुलाया, उनके साथ उनके 100 पुत्र थे, हजारों सैनिक थे, सब आ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था ये क्या करेंगे वशिष्ठ मुनि। विशिष्ट मुनि ने अपनी कोटिया से एक साधारण सी गाय को बुलाया। विश्वामित्र देखकर हैरान हो गए, गाय कहां से आ गए। और बोला कि हे गाय कृपया करके विशेष प्रबंध कीजिए। तभी तुरंत पूरे पूरे विश्वामित्र के सैनिकों के लिए, पुत्रों के लिए एक बहुत बड़ी फीस्ट प्रकट हो गई। उस फीस्ट में तरह तरह के सैकड़ों व्यंजन, उनकी सुगंध, उनका स्वाद, उनका रंग, उनकी सजावट देखने वाली थी। सारे के सारे सैनिक खूब बढ़िया फीस्ट खा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी एकदम विस्मित हो गए। गाय से इतनी बड़ी फीस्ट, कमाल है। वो खाते भी जा रहे थे और गाय को देखते ही जा रहे थे। फीस्ट तो समाप्त हो गई। विश्वामित्र ने सोचा इतनी महत्वपूर्ण गाय ये छोटी सी कुटिया में क्यों, मैं राजा हूं, राज्य की सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा के पास होनी चाहिए। फीस्ट पाने के बाद वशिष्ठ मुनि के पास गए, बोले मैं आपको 1,00,000 अच्छी नस्ल की गाय दूंगा, कृपया करके ये गाय मुझे दे दीजिए। ये गाय सुरभि गाय थी, इसका नाम था शबला। और बताया जाता है वाल्मीकि रामायण में कि समुद्र मंथन के बाद जो गाय उत्पन्न हुई, ये भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ मुनि को दे दी थी। तो शबला गाय थी, तो बोला ये 1,00,000 अच्छी नस्ल की गाय लो और मुझे ये शबला गाय दे दो। वशिष्ठ मुनि ने बोला संभव ही नहीं है, ये मेरी माँ है, इसका कोई दाम ही नहीं है, इससे मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता सनातन काल तक। विश्वामित्र जी राजा थे, डिप्लोमेसी जानते थे, उन्होंने सोचा शायद दाम बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने बोला हे ऋषिगण, आप मुझसे 14,000 हाथी, 11,000 घोड़े, 800 सोने के रथ, 1,00,000 नहीं 1,00,00,000 गाय लीजिए, लेकिन ये शबला गाय मुझे दे दीजिए। विशिष्ट मुनि ने कहा असंभव, ये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मैं इस कुटिया में रहता हूं भगवत साक्षात्कार के लिए, और भगवत साक्षात्कार के लिए जो चीज भी मुझे आवश्यक होती है ये गाय मेरी आवश्यकताएं पूरी करती है, बिना इस गाय के मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हम सब भी भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं और बिना गायों की पूजा किए, गायों की रक्षा किए, हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद कहते हैं काउ प्रोटेक्शन एंड ब्राह्मणिकल कल्चर गो हैंड इन हैंड, वैदिक संस्कृति और गायों की रक्षा दोनों साथ साथ चलते हैं। तो विशिष्ट मुनि पूरे इस बात में कन्विंस थे, आश्वस्त थे कि बिना इस गाय के मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप जो मर्जी कहिए, जितना मर्जी मुझे दान दीजिए, मैं इसको नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, रजोगुण में उनको बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने बोला आप क्यों नहीं देंगे, मैं राजा हूं, आप मेरी प्रजा के हैं, ये गाय भी मेरी प्रजा है, ये मेरे क्षेत्र में है, इस पे मेरा अधिकार है। वशिष्ठ मुनि बड़े प्रेम से मुस्कुराए, बोले राजा ध्यान से देखिए क्या गाय आपके क्षेत्र में है, क्यों नहीं देखिए। देखा तो गाय जमीन पे है ही नहीं, जमीन से ऊपर है, उसके पांव पृथ्वी पर है ही नहीं। तो विश्वामित्र समझ गया अभी मानने वाले नहीं है, अब मुझे ताकत का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने को क्रोध आया और शक्ति से उन्होंने गाय को खींचना शुरू कर दिया कि मैं इसको ले जाऊंगा। जब ऐसा किया तो विशिष्ट मुनि चुपचाप खड़े रहे। शबला गाय थी, उसको बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बोला हे ऋषि, तुम उससे प्रेम करते हो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूं, और ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है, क्यों नहीं तुम क्रोध करते, तुम मेरी रक्षा करते। लेकिन वो चुप रहे, तो उस गाय से सहन नहीं हुआ, कहती मैं तो उसके साथ जाऊंगी नहीं। तो जबरदस्ती अपने आप को छुड़ा के वो विशिष्ट मुनि के पास गए और पूछा तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। तो विशिष्ट मुनि बोला मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये राजा है और मैं इनकी प्रजा हूं, तो मैं इनका विरोध नहीं करूंगा। चाहे इनकी आवश्यकता बिल्कुल गलत है, तब भी ये नरदेव हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, और दूसरा ये मेरे अतिथि हैं, मैं इनका अपमान कैसे कर सकता हूं। ये है वैदिक संस्कृति। तो शबला ने कहा, नहीं मैं इस बात को नहीं मानती, ऋषि की स्थिति राजा से ऊपर होती है, राजा को ऋषि के आदेशों पर ही कार्य करना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता सब चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। ये क्या देखिए, क्या संस्कृति देखिए। तो वशिष्ठ मुनि बोला, हाँ आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो उस गाय ने क्या किया, अपने शरीर से एक लाखों सैनिक उत्पन्न कर दिए। जो सैनिक उत्पन्न हो गए तो विश्वामित्र का भी बहुत तेज था, उन्होंने उन सैनिकों की हत्या कर दी। इसके बाद शबला गाय ने अपने शरीर के हर अंग से, पूछ से, मुख से, थनों से, उदर से, अपने गर्भ से, साइड से, इधर उधर से कई तरह के सैनिक उत्पन्न कर दिए। वर्णन आते हैं उसमें मलेच्छ हैं, यावन हैं, हुनस हैं, किन्नर हैं, जो तरह की निम्न जाति के हैं सब उत्पन्न हो गए, और सबने धड़ाधड़ विश्वामित्र के जो सैनिक थे उसको ध्वंस कर दिया। तो जब विश्वामित्र जी ने देखा बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो फिर वो वापिस आ गए। और इसके बाद बहुत लंबी कथा है, कितनी उन्होंने तपस्या की ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, बहुत लंबी कथा है। लेकिन एक युद्ध कैसे शुरू हुआ, एक गाय के ऊपर, क्योंकि दोनों विश्वामित्र और विशिष्ट मुनि गाय के महत्व को जानते थे। तो इसलिए आज अति आवश्यक है कि हम गायों के महत्व को समझें और हम इस ढंग से प्रचार करें वैदिक संस्कृति का कि ये जो हमारा कृत्रिम जीवन शैली है, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, आज के किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा दूध कहाँ से आता है। वो तो बोलता है कहीं रिलायंस के स्टोर में जाऊंगा पैकेट मिल जाएगा, इसको क्या मालूम दूध कहाँ से आ रहा है, घी कहाँ से आ रहा है, क्या गायों का महत्व है। प्रभुपाद बोल रहे हैं बिना गायों के हम यज्ञ नहीं कर सकते, और जो यज्ञ नहीं करता भगवद गीता तीसरे अध्याय में बताया गया है, एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवीर्जन अघायु इंद्रिय आरामा मोघम पार्थस जीवती। जो लोग इंद्रिय इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है, वो अपने इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगे हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और इस पूरे समाज में सुख और संपन्नता ला सके, तो अति आवश्यक है कि हम गायों और बैल की रक्षा करें। जो गाय का दूध होता है उसको प्रभुपाद कहते हैं लिक्विड रिलीजन है। जब गाय का दूध निकाला जाता है तो बोला गया है गाम च धर्म दुधाम, गाय के दूध के द्वारा हम धर्म के सिद्धांतों को निकाल रहे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है, केवल गाय का दूध दूध ही नहीं है, ये धर्म के सिद्धांत है। तो इसलिए हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी का ये स्वप्न था, ये इच्छा थी कि वो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर सके, और वर्णाश्रम धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो गाय और बैल है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम लोग नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, यहाँ पे कैसे हम गायों, सरकार अलाउ ही नहीं करती घर में गायें रखें, कुत्ते जितने मर्जी रखें गाय नहीं रख सकते, तो क्या करें, कैसे हम किस तरह से जो गाय हमारी माता है और जो गाय की रक्षा के बिना हम ना अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत दुविधा है हमारे लिए, तो कैसे हम इस गायों की रक्षा के लिए कुछ सहयोग दे सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं गाय के पंचगव्य मल और मूत्र उनकी भी इतनी वैल्यू है। गोबर, गोबर का क्या अर्थ है, गाय का वरदान, जो मल है वो गाय का वरदान है। गायों को छूने मात्र से ही कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, गायों के साथ रहने मात्र से ही हमारे अंदर सद्गुण विकसित होता है। तो बहुत महिमा है, इसके लिए कई बड़े बड़े सेमिनार्स भी दिए जा सकते हैं, और गायों से कितने बीमारियों का उपचार होता है। तो किस तरह से हम दिल्ली शहर में रहते हुए गायों की रक्षा कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है जो गायों के उत्पाद हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि जितना गायों का उत्पाद यूज करेंगे लोगों को मालूम चलेगा ये उत्पाद बनते हैं पंचगव्यों से, तो हमें गायों का जो मूल्य मालूम चलेगा कि गायों का मूल्य, गायों का जो गोबर और मूत्र है वो गायों के मांस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गायों का वध रुकेगा, है ना। आप में से कितने भक्त लोग नियमित रूप से कॉ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में? बहुत कम। आप सामने देखिए कॉ प्रोडक्ट्स का स्टॉल है, आप जाइए, लिखा हुआ है सर्व मदर कॉ, ओके। सबसे निवेदन है कॉ प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में उतारिए और इसका प्रचार कीजिए, अपने मित्रों को संबंधियों को इसके बारे में बताइए, गर्व होना चाहिए हम अपने वैदिक संस्कृति का, उसका खूब प्रचार करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? हाँ जी, गाय के दूध का सेवन करें सब लोग मिलके। अब गाय का दूध, सही गाय का दूध कहाँ से मिलता है ये देखना पड़ेगा। आजकल ऐसे बहुत से डेयरी फार्म्स खोल दिए गए हैं जिसमें मशीनों द्वारा जबरदस्ती गाय का दूध निकाला जाता है। इतना बड़ा टॉर्चर, वायलेंस, गायों को खूब खिलाया पिलाया जाता है, उनसे दूध निकाला जाता है मशीनों द्वारा, बाद में उसका वध कर दिया जाता है। गायें दूध देती है वात्सल्य से, प्रेम से, जहां उसको चरने की अच्छी सुविधा हो, और अपने आप स्वतः वध होते हैं। जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के मशीनों के द्वारा दूध, कोई मां से ऐसे दूध निकलवा सकता है? आप सोचिए, मां के स्तनों में दूध आता है वात्सल्य से, तो गाय हमारी माता है। तो अगर हम दूध सही जगह से दूध आ रहा है तो उसके लिए आयोजन करें। और क्या कर सकते हैं? हाँ, वहां फैसिलिटीज अवेलेबल है, इस्कॉन में कई गौशाला है, वहां हम जाए उनकी मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप कर भी रहे हैं और इसको रोज छंग से कर सकते हैं, कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे किसे गायों की रक्षा कैसे हो रही है, हैं? हाँ, गाय के उपले जलाने से बहुत फायदा होता है, गाय के गोबर से न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रिएक्शन, उससे रक्षा होती है। हाँ, वो तो बहुत लाभ है, उसके लिए तो बहुत सी बड़ी लक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन आप हम लोग कर रहे हैं वो सब। हाँ, प्रचार के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बताया गया, जितना वैदिक संस्कृति का प्रचार होगा उतना गायों की रक्षा होगी, स्वतः ही रक्षा होगी, और जितनी गायों की रक्षा होगी उतनी अच्छे तरीके से वैदिक संस्कृति का प्रचार होगा। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि गायों का दूध पीने से प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे मस्तिष्क के जो टिश्यूज हैं वो फाइन होते हैं और हम इस वैदिक संस्कृति को, वैदिक ज्ञान को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अभी जो दूध पीते हैं उससे हमारी बुद्धि मोटी होती है, उसमें मैथमेटिक्स की तो इक्वेशन समझ में आती नहीं, आत्मा ज्ञान कैसे समझ में आएगा, बुद्धि तीव्र होती है गाय के दूध से। तो दोनों आवश्यक है, इसलिए जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे, ग्रंथों का प्रचार करेंगे, ग्रंथों का वितरण करेंगे, वैदिक संस्कृति का प्रचार करेंगे, अपने आचरण से और प्रचार से लोगों में जागृति लाएंगे, तो स्वतः ही गायों की रक्षा होगी। और ऐसा हुआ, रशिया में कितने भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते ऐसी जगह में पहुंच गए जहां केवल कसाई घर थे और बेचारे हैरान हो गए, अब क्या करें, ऐसी ऐसी गली में आ गए जहां बिल्कुल गायें कटी हुई हैं, खून बह रहा है, और जब पुस्तक वितरण जा रहा था किसी ने बुलाया यहां पे आओ, कसाई मोटे चौड़े एकदम, और भक्त बेचारे दुबले पतले और पहले खून टपक रहा है चारों तरफ, लाओ क्या है तुम्हारे पास, अब तो कोई वो चारा ही नहीं है। डरते डरते किताब पकड़ा दी, किताब भी दी, खून से लखपत हाथ से देखा उन्होंने, बोले ठीक है रख दिया यहाँ पे, मतलब कुछ पैसे दे दिया उन्होंने, चले गए। और बाद में यही कसाई मंदिर में आता है और अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। तो ये भगवत संदेश में बहुत शक्ति है, पूरे उत्साह से हमें प्रचार करना चाहिए, गायों की रक्षा के लिए सहयोग देना चाहिए, और इस वैदिक संस्कृति और गायों की रक्षा से हम अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुरभि गाय के नाम से हमें एक और चीज याद आ गई, आज हम पंजाबी बाग में हैं, आज हमारे बीच में राधा राधिका रमन जी हैं, ये राधा राधिका रमन जी का और सुरभि नाम का एक विशेष संबंध है, कितने भक्त बता सकते हैं क्या संबंध है? सुरभि महाराज जी के हाथों से ये विग्रह स्थापित हुए थे। छोटा सा संक्षिप्त इतिहास, हमारे जो इष्ट हैं राधा राधिका रमन का इसका इतिहास भी मालूम होना चाहिए। तो सुरभि महाराज जो थे उनको इस्कॉन का विश्वकर्मा कहा जाता था। वृंदावन का मंदिर बनाया उन्होंने, बॉम्बे का मंदिर बनाया, आर्किटेक्ट थे वो। तो जब वृंदावन में थे तो फिर उनको एक फोन आया सतगुरु महाराज जी के सेक्रेटरीज पर कि दिल्ली में एक जगह है कोई पंजाबी बाग, वहां पे कोई खन्ना जी है, वो अपनी बिल्डिंग कोई दान में देना चाहते हैं, आप जाइए जरा देखिए। तो सुरभि महाराज थे और उनके असिस्टेंट थे सांबा प्रभु ब्रह्मचारी, वो दोनों यहाँ पे आए। बड़ा अच्छा बिल्डिंग लगा, 500 गज का बिल्डिंग है, ले लिया। और उन्होंने उस पंजाबी बाग की बिल्डिंग को बना दिया इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ फॉर आर्किटेक्चर। कोई वहां मायापुर का मंदिर का भी था, उसकी भी योजना बना रहे थे, वृंदावन का मंदिर भी चल रहा था। तो एक अच्छा एक दूर एक जगह मिल गई जहां आराम से बैठ के प्लानिंग करेंगे, सब कुछ डिजाइन करेंगे। तो चलता रहा ऐसा, काफी टाइम बीत गया। फिर एक प्रभुपाद जी के कोर शिष्य थे जगत गुरु स्वामी, वो कहीं बाहर जा रहे थे, उनके कृष्ण बलराम के विग्रह थे, बोले आप इनकी थोड़ी सेवा कर लो। तो 1.5 साल तक वो सेवा करते रहे, फिर वो आए वापिस ले गए। फिर कोई और व्यक्ति आया, बोला ये मेरे पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं इनको आप रख लीजिए। तो उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। सामा प्रभु ने महाराज को बोला कि हमारा क्या भाग्य है, लोग आते हैं विग्रह दे जाते हैं फिर ले जाते हैं। अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आ गए, इनको फिर आके कोई ले जाएगा, तो क्यों ना हम राधा कृष्ण के विग्रह ले आए। तो महाराज ने बोला नहीं, बहुत चक्कर पड़ेगा, हमसे नहीं होगी सेवा, रहने दो। बोला देख लीजिए आप, छोड़ के बात निकल गई। फिर सामा प्रभु जनपथ होटल में गए कनॉट प्लेस में, वहाँ के मालिक को लाइफ मेंबर बनाने के लिए। तो लॉबी में बैठे थे तो दिल्ली के बिजनेसमैन आए, उन्होंने देखा एक ब्रह्मचारी बैठे हुए, बोले आप कहाँ से हैं। उन्होंने इस्कॉन से, कहता है मैं भी कोई ना मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैंने दुर्गा माता की विग्रह बनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बनाइए, दुर्गा जी का विग्रह भी कर देंगे, कोई समस्या नहीं, आप आइए हमारे मंदिर में। बहुत चतुर थे, आगे मंदिर में इन्वाइट किया उन्होंने, बढ़िया अच्छा प्रसाद वसाद खिलाया, बैठ के बातचीत की, सुरभि महाराज से मिलाया, बहुत इंप्रेस हो गया कि विदेशी हैं इतना अच्छे ढंग से वेदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं। बोले हम सोच रहे थे कि राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित करते, बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है राधा कृष्ण को। तो उन्होंने तुरंत 12,000 रुपए के दे दिए, उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ गई, 12,000 रुपये आ गए। और फिर सामा प्रभु गए जयपुर में, पांडे जी को बोला कि आप ऐसे विग्रह बनाइए, और फिर आगे और जून 1986 में इन विग्रहों को स्थापित किया गया। अभी पिछले वर्ष ही उन्होंने शरीर छोड़ा और भगवान की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया सुरभि महाराज जी ने। तो सुरभि के नाम से ये याद आया, यहाँ पे आए थे। हाँ तो हमारा सौभाग्य है कि उनके कृपा से आज हमें राधा राधिका रमन जी के विग्रह प्राप्त हुए, और उन्होंने कृष्ण बलराम की सेवा की तो कृष्ण बलराम भी यहाँ पंजाबी बाग में प्रकट हुए। उनका योगदान है हमारे जीवन में, आज हम उनको याद कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और साथ ही आज के इस श्लोक से हम ये सीखते हैं कि जिस ढंग से शिव जी ने परम वैष्णव हैं उन्होंने लोगों के हित के लिए विष पिया, और उसके बाद आराम से कोई क्लेम नहीं किया मैंने विष पिया तो मुझे भी कुछ दो, तो एक वैष्णव का ये चरित्र होता है। दूसरा, दोनों दानव और देवतागण एक दूसरे पर निर्भर है, और वो शिवजी से भी उन्होंने मदद मांगी। तो अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भक्तों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, और आवश्यकता पड़े तो मदद मांगने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। फिर हमने पाया कि गायों की रक्षा करना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना आवश्यक है, और गायों की रक्षा हम कर सकते हैं गायों के उत्पाद का उपयोग करके और गायों की सेवा करके, और साथ में शास्त्रों का वितरण, शास्त्र ग्रंथों का वितरण और प्रीचिंग करके हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, ताकि लोग का अंतःकरण शुद्ध हो और इस वैदिक संस्कृति को अपनाएं। और इन सब कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी हमारे पास है। शिला प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना करने में जो मुश्किलें सही वो जहर के समान है, उसको पिया प्रभुपाद जी ने, और अब हमें पूरे उत्साह के साथ मंथन करना है और कृष्णा भानामृत को प्राप्त करके इसका वितरण करना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट्स? यस प्रेमानंद प्रभु।
हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने सुना कि गाय शायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से हमें दूध प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, इसी से यज्ञ होते हैं। और हम देखते हैं कलयुग में जो यज्ञ है वो हरिनाम है, और इस यज्ञ को करने के लिए गाय की शायद आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ठीक बात है। तो
जो आप कह रहे हैं कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन है, इसके लिए कोई यज्ञ तो करना नहीं, अग्नि जलानी नहीं, घी अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों गायों की रक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए यज्ञ की? लेकिन हरिनाम संकीर्तन को भी सही ढंग से करने के लिए हमें पूरे सिद्धांत को अच्छे ढंग से समझना होगा, तभी वो हरिनाम हमारा ज्यादा प्रभावशाली होगा। और उस सिद्धांत को अच्छे ढंग से समझना, उस संस्कृति को अपने जीवन में उतारना, उसके लिए निश्चित रूप से हमें गाय के दूध की आवश्यकता है, और गाय के दूध के लिए गायों की रक्षा की आवश्यकता है। हमारा हरिनाम संकीर्तन निरंतर चलता रहे और ज्यादा प्रभावशाली रहे, इसके लिए गायों का महत्व है।
किस रूप से कनेक्ट
बताए कि हरिनाम संकीर्तन ठीक है, एक बार आपने कर दिया उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन निरंतर रूप से करते रहें और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से करें, तो इसके पीछे जो हरिनाम का महत्व है वो शास्त्रों में उदित किया गया, तो उस शास्त्रों के उस गहराई से समझना पड़ेगा, तभी हमारा हरिनाम प्रभावशाली होगा। और शास्त्रों को समझने के लिए तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है, और उसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, तो वो प्राप्त होगा हमें गाय के दूध से।
अटल जी, इस्कॉन के अलावा शायद ऐसी कई और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो गायों की सेवा के लिए बहुत, शायद मुझे ऐसा लगता है इस्कॉन से भी बड़ा योगदान कर रही हैं, बहुत आगे आके इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो हमारा उनके प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमें कैसे अगर सपोर्ट करते हैं या?
थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस क्वेश्चन। कि हम बहुत सी ऐसी संस्थाएं देखते हैं कि जो गायों की रक्षा बड़ी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां लाखों लाखों गायों की रक्षा हो रही है, अच्छी बात है, वी आर थैंकफुल टू देम कि सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पा रही, क्योंकि वो गायों की रक्षा और ब्राह्मणिकल कल्चर, वैदिक शास्त्रों के महत्व को दोनों साथ साथ नहीं देख पा रहे। हम हिंदू हैं, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, केवल इस सेंटीमेंट से नहीं। गाय आधार है वर्णाश्रम प्रणाली का, और गाय आधार है वैदिक संस्कृति का, और तभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस कल्चर को बढ़ाएं, ब्राह्मणिकल कल्चर को और गाय रक्षा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर वो केवल गौ रक्षा कर रहे हैं, कोई वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहे, शास्त्रों का प्रचार नहीं कर रहे, तो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। अगर हम दोनों साथ साथ चलाएंगे, इसलिए इस्कॉन के पास ही सबसे अच्छी सुविधा है, अगर हम वास्तव में गो रक्षा करना चाहते हैं कि हम वैदिक संस्कृति का प्रचार, शास्त्रों का प्रचार और साथ साथ में गो रक्षा, दोनों साथ साथ चलेंगे, ये केवल एक सेंटीमेंट से काम नहीं होगा।
जैसे आपने बताया कि अगर हम अपने भगवत मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गायों के लिए मतलब सुरक्षा भी करनी पड़ेगी और गायों की प्रोटेक्शन मतलब करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जिस पेज से हम शास्त्रों का वितरण कर रहे हैं, तो इसमें ये कभी इस तरह की सिचुएशन आ पाएगी क्या कि इसमें हम कामयाब हो पाएंगे? जिस तरह से मतलब कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, लोग अज्ञान में डूब रहे हैं, हम प्रचार भी कर रहे हैं उसके, तो इसलिए हमेशा यही सिचुएशन रहेगी?
क्या उत्तर देना चाहिए इनको? बोले कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, अज्ञानता बढ़ रही है, तो हम सफल हो पाएंगे क्या? हाँ, ये टग ऑफ वार है, वो इतने उत्साह से अज्ञानता का प्रचार कर रहे हैं, हमें उसे डबल उत्साह से ज्ञान का प्रचार करना। भक्ति ठाकुर जी यही बोलते हैं, जब मैं कर्मी लोगों को देखता हूं इतनी मेहनत करते हुए, मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम सही ज्ञान का प्रचार करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? प्रश्न हमने अपने आप को पूछना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम पर भी एक कलयुग का प्रभाव पड़ेगा और हम सफल होना मुश्किल है। इसलिए अगर अपनी ही रक्षा करनी है, गायों की रक्षा तो छोड़िए, गायें हमारी रक्षा करती है, धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर अपनी ही रक्षा करनी है तो हमें इस वैदिक संस्कृति का प्रचार और गायों की रक्षा जोर शोर से करनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं बचेंगे भक्ति में, इतना प्रभाव पड़ जाएगा। अभी हमारे लिए जप करना दिल्ली में इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वातावरण रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है, कितनी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है दिल्ली शहर में रहकर सामना करने के लिए। जैसे दिल्ली से बाहर जाते हैं सबका ये कहना है मन को ऐसा हल्का हो गया, दिल्ली क्रॉस करते ही शहर के दूर जाते ही हमारा मन साधना में लगता है। तो आगे आने की स्थिति तो बहुत खराब है क्योंकि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं कि गांवों का नगरीकरण करना है, गांव गांव में वाईफाई पहुंचाया जाएगा, कितनी तरक्की करेंगे गाय, गांव रह ही नहीं गए, कोई जगह नहीं बचेगी हमारे लिए कहीं जाके हम चुपचाप बैठ के साधना कर सकें, इतनी बुरी हालत होगी। इसलिए प्रचार बहुत आवश्यक है। ठीक है, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, सुरभि गाय की, निताय गौर प्रेमानंदे।
अमरीका से चार पेटेंट करवा दिए।